Awakening to a new way of living.
Om Shanti. Wish you a beautiful golden evening. On behalf of the Brahma Kumaris family, I am extending warm greetings of happiness, health and harmony. It is an honor and privilege for me to welcome all of you to inaugural session of Juris Doing National E-Conference on Spirituality in Dispensation of Justice. न्याय में आध्यात्मिकता अति आवश्यक. Let's invoke the spiritual conscience behind the conference. परम न्यायकर्ता ईश्वर को साथ लेते हुए इस सत्र की शुरुआत करते हैं.
प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए.
अब हमें राजयोगिनी पुष्पा दीदी जी, जो कि 5 दशकों से ब्रह्मा कुमारीज के साथ संलग्न हैं और अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान कर रही हैं, ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा किए जाने वाले विशेष कार्यों की एक छोटी सी झांकी हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी. आप ज्यूरिस्ट विंग की वाइस चेयर पर्सन हैं. दिल्ली से हमसे जुड़ रही आदरणीय पुष्पा दीदी जी से अनुरोध रहेगा कि साथ ही हमें राजयोग मेडिटेशन की अनुभूति कराएं, जो हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति का संचार करे, जिससे हमारे अंदर उत्तम न्याय करने की शक्ति का विस्तार हो.
ओम शांति. सुप्रीम जस्टिस, सुप्रीम फादर की प्रिय संतान, रूहानी स्नेही भाई और बहनों, इस कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस पुष्पेंद्रा जी, हमारे भाई ऑनरेबल जस्टिस वी ईश्वरैया जी, रिस्पेक्टेड ब्रदर बी एल महेश्वरी जी, लता बहन जी, विद्या बहन जी, I am pleased to extend my warm welcome to all of you. मुझे आज विशेष इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के बारे में और इसके द्वारा सिखाए गए मेडिटेशन के बारे में संक्षेप में बताने के लिए कहा गया है. प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय इज एन स्पिरिचुअल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसकी स्थापना 1937 में स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा ने साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा की. और यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 83 वर्षों से नैतिकता और मूल्यों की शिक्षा द्वारा मानव के उत्थान के लिए समाज में सुख और शांति आए, ऐसा खुशहाल समाज बने, उसकी सेवा में तत्पर है. और जिसके फलस्वरूप वर्तमान में भारत और अन्य 140 देशों के अंदर 8,500 केंद्र हैं और इसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान भारत में है. और विशेष ब्रह्मा कुमारी इज एन इंटरनेशनल एनजीओ एंड इज एफिलिएटेड टू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड इन कंसल्टेटिव स्टेटस विद यूनिसेफ. इसको 7 पीस मैसेंजर अवार्ड भी प्राप्त हो चुके हैं और विशेष रूप से इसकी एक सहभागिनी संस्था राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के नाम से है. ब्रह्मा कुमारीज और यह मिलकर के विभिन्न वर्गों की सेवा कर रहे हैं. आज समाज में हर प्रोफेशन को ये जरूरत है, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, वे महसूस करते हैं कि अपने कार्य क्षेत्र में कैसे सफलता पाएं और कैसे स्ट्रेस फ्री जीवन जिए, और इसी लक्ष्य को रखते हुए इसके 20 विंग्स बनाए गए इसके अंतर्गत। जैसे कि अभी हम ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस देख ही रहे हैं, जिसमें लीगल लाइन से कनेक्टेड जो भी भाई बहने हैं वो इसमें इस संस्था के द्वारा सिखाई गई एजुकेशन और मेडिटेशन का लाभ लेते हैं। इसी प्रकार से मेडिकल विंग, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, वुमेन्स, यूथ, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स आदि भिन्न भिन्न प्रोफेशन के 20 विंग्स बने हुए हैं, और उनके लिए लगातार इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर अनेक कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, शिविर्स, फेस्टिवल्स, लेक्चर्स आदि के कार्यक्रम चलते रहते हैं। और उसमें हम विशेष रूप से पीस ऑफ माइंड, स्ट्रेस फ्री लाइफ, एकाग्रता, कंसंट्रेशन कैसे बढ़े, नशा मुक्त जीवन कैसे बने, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे हो और स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे हो, सेल्फ मैनेजमेंट कैसे हो, इन विषयों को लेकर के सभी वर्गों के भाई बहनों को इसके बारे में सुनाते हैं। और इसी के लिए ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में जो स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाती है और मेडिटेशन, जिसको राजयोग कहते हैं हम, उसका अभ्यास भी कराया जाता है। अभी मैं इसके बारे में और अधिक समय न लेती हुई थोड़ा सा आपको मेडिटेशन के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि आज के समय में सबकी ये इच्छा भी रहती है और जरूरत भी है। जिस प्रकार के सर्कमस्टांसेस हम देख रहे हैं, चारों ओर से मनुष्य के सामने अनेकानेक घटनाएं घट रही हैं, और उसको बहुत जरूरत है कि मन को कैसे शांत रखे, खुशहाल रखे। तो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो ये राजयोग सिखलाया जाता है, मेडिटेशन जिसको हम राजयोग कहते हैं, वो इसी ही जरूरत को कि हमारा मन शांत रहे, खुशहाल रहे और शक्तिशाली रहे। राजयोग से हमारे जीवन के अंदर वह स्पिरिचुअल इंटरनल पावर आ जाती है कि हम अपनी सोच स्थिति को इतना अच्छा, पॉजिटिव और स्ट्रांग बना लेते हैं कि परिस्थितियों से आई हुई जो भी घटनाएं, बाहर से जो भी, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे साधन द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, और जैसा अभी आप देख ही रहे हैं जो चल रहा है, उसका इफेक्ट हमारे मन पर नहीं आए। क्योंकि मानसिक स्थिति को ही शक्तिशाली बनाना बहुत आवश्यक है, और जब हमारा मन अंदर से स्ट्रांग होता है तो चाहे तन के साथ, चाहे धन के साथ, चाहे जन के साथ, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की बात हमारे सामने आती है तो हम उसके ऊपर सहज विजय पा सकते हैं। तो राजयोगा का अर्थ है सेल्फ रियलाइजेशन। राजयोग मीन्स गॉड रियलाइजेशन। क्योंकि योग का आप स्वाभाविक अर्थ ही समझ ही रहे हैं, कनेक्शन, जोड़। अब ये जोड़ किसका, किसके साथ? क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं और परमात्मा हम सबका पिता है, रचयिता है। तो ये सिद्ध होता है कि मेरा उसके साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए इसको राजयोग कहा गया है। राजा मीन सुप्रीम। तो सर्वप्रथम मैं स्वयं की राजा बनूं, अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों की राजा बनूं। और आज मनुष्य के आगे यही सबसे बड़ी समस्या है, या मैं कहूं कि ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि वे अपने मन का भी राजा नहीं बन पाता है। और अक्सर मनुष्य ये कहने में आता है कि मेरा मन बहुत चंचल है, टिकता नहीं है, इधर जाता है, उधर भागता है, या कभी कहेगा मेरा मन बहुत उदास है, या आज के टाइम में कितना डिप्रेशन चल रहा है, उसका भी कारण वास्तव में तो मन की ही शक्ति का कम होना ही है, या कोई भी नेगेटिविटी अंदर रहती है तो उसका कारण भी वास्तव में यही ही है। तो हमें राजयोग मीन्स अपनी इन कर्मेंद्रियों के मालिक बनना, अर्थात आँख, कान, नाक, मुख के तो बनना ही है, पर मन के भी मालिक बनना, ये भी हमारी एक सूक्ष्म इंद्रिय है, क्योंकि मन का काम है सोचना। तो जो हमारा सोच है वह पॉजिटिव रहे, प्योर रहे, पावरफुल रहे, तो राजयोग से हमारे जीवन में ये बहुत सहज हो जाता है कि हम अपने माइंड को पॉजिटिव रख सकते हैं। क्योंकि जैसा हमने कहा, राजयोग मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन, जिसके अंदर हमें सबसे पहले ये पहचान मिलती है कि मैं स्वयं में कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मेरी मूल नेचर कौन सी है। अब ऐसे तो हम सारे दिन में स्वयं को अपने बारे में ऐसे जानते ही हैं कि मैं एक व्यक्ति हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, या जो भी हमारा प्रोफेशन है, कास्ट है, उससे हम स्वयं को कह देते हैं, अपना परिचय देते हैं। लेकिन मेरी रियल आइडेंटिटी कौन सी है? क्योंकि ये शरीर तो 5 तत्वों का है, पर इसके अंदर इसको चलाने वाली मैं एक चैतन्य सत्ता हूँ, लिविंग फोर्स हूँ, जो एक सूक्ष्म एनर्जी है, जो इन आंखों से नहीं दिखाई देती लेकिन मेरे शरीर में, मस्तक में यहाँ निवास करती है, जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं। और साइंस ने भी प्रूव किया है कि वो एक एनर्जी है जिसके चले जाने से ये जीवन नहीं रहता, शरीर सिर्फ रह जाता है, जो जड़ है। तो उसकी मेरी रियलाइजेशन, जब हम इस रियल कॉन्शियस को समझ लेते हैं कि वो मैं एक अपने आप में सूक्ष्म एनर्जी हूँ, जिसका रूप पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति का एक बिंदु है, और वो इस मस्तक में निवास करता है, और मुझ आत्मा का ही पिता, परम पिता, परम आत्मा जो सुप्रीम पावर है, वह भी पॉइंट ऑफ लाइट है और वह ऑल माइटी है, सागर है। तो जिस प्रकार से हम अपने घर में लाइट का कनेक्शन लाने के लिए सुप्रीम उससे जोड़ते हैं, जहां से पावर आती है, पावर हाउस से जोड़ते हैं, आप अपने सेल फोन में भी एनर्जी लाने के लिए पावर से कनेक्शन करते हैं, तो राजयोग का मींस कनेक्शन विद सुप्रीम गॉड फादर, जो कि मन के द्वारा है, संकल्पों के द्वारा है। हमें अपने थॉट्स को उस सुप्रीम पावर पर टिकाना है और यही सोचना है। मन मींस ही थिंकिंग करना, जैसे हम सारा दिन कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। अब राजयोग की प्रैक्टिस में हमें क्या सोचना है वो मैं आपको 1-2 मिनट के अंदर बताती हूँ, और उन्हीं थॉट्स की आप प्रैक्टिस करेंगे तो सहज ही इस अभ्यास के द्वारा आपकी मनोस्थिति शक्तिशाली होती जाएगी। वो थॉट्स मैं आपको देती हूँ, आप सिर्फ उसे सुनिए और अंदर ऑब्जर्व करते जाइए, अनुभव करते जाइए, ग्रहण करते जाइए। मैं स्वयं में एक सूक्ष्म एनर्जी पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। जो मस्तक में स्थित हूँ, और इस शरीर को चला रही हूँ, आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ, इसकी मालिक हूँ, राजा हूँ। और मेरा संबंध अविनाशी परम सत्ता, परम आत्मा के साथ है, उसकी मैं क्रिएशन हूँ। परमपिता उनका स्वरूप भी पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन वह सर्वशक्तिवान है, और सुख और शांति का सागर है। प्यारे परमपिता, मैं आपकी संतान आपको याद कर रही हूं। मेरे ये थॉट्स एक एक करके आप ही के ऊपर कंसंट्रेट होते जा रहे हैं और इस तरह मेरे अंदर आपके द्वारा वह सुख शांति और शक्ति आती जा रही है। इसी तरह मैं आत्मा अपने जीवन में आपसे अपने विचारों को आप पर एकत्रित कर सदा शांति की प्राप्ति, शक्ति की प्राप्ति करती रहूंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
होल हार्टेड थैंक्स पुष्पा दीदी फॉर टेकिंग ऑल ऑफ अस टुवर्ड्स ए ब्लिसफुल जर्नी to maintain balance in life. Do you know, dispensation of justice is an attribute of God. This is why the common man considers the courts as the second place where God resides. The word justice itself means equity and fairness, which are manifest states of oneness or spirituality. Now, I feel honored to invite Honorable Justice V. Ishwarya, former Acting Chief Justice, High Court, Andhra Pradesh, to take us through today's subject. He is joining us from Hyderabad. He was former Chairperson, National Commission for Backward Classes. Presently, he is the chairman of Andhra Pradesh Higher Education Regulatory and Monitoring Commission. He is patron of Jurist Wing RERF and is enriched with the experience of Raj Yoga practice. Requesting Brother Ishwarya Ji to express his valuable views on today's subject.
Very good evening, all my spiritual brothers and sisters. I am very happy to participate in the National Jurist E-Conference Spirituality in Dispensation of Justice. Then I am very happy to know that today's chief guest is Dr. Justice Pushpendra Singh Dhati ji and our chairperson of Jurist Wing BL Maheshwari ji, the vice chairperson of Jurist Wing Brahma Kumari Rajayogini Pushpa Didi ji, national coordinator Latha ji. It gives me an immense pleasure to participate in the Jurist Conference on the subject of spirituality in dispensation of justice. Before speaking a few words about the spirituality in dispensation of justice, out of my own experience as a High Court Justice for 14 years, thereafter as a Chairperson, National Commission for Backward Classes, Government of India, now also I am a Chairperson of the AP Higher Education Regulatory Monitoring Commission. I am into the spiritual knowledge from last 21 years. Third day after my elevation as a high court judge, I happened to visit the Mount Abu and know something about the spirituality and the spiritual knowledge. So many of us are ignorant about the spirituality. They think that spirituality is required at the old age, after retirement, after vanaprastha, but it is not correct. Spirituality is required from the childhood, for all walks of the life, specially is required for the judges, for dispensation of the justice. Because without knowing the spirituality, it's impossible for any judge to dispense the impartial justice without fear or favor, without any prejudice, and as per the oath taken by him under the Constitution of India. And therefore one should know what is the spirit. Spirit is every human being is a matter of fact, is a spirit. Therefore, the quality of the being concerned with the human spirit or soul, spirit is not a material or physical. It is a non-material entity, it is a metaphysical entity. Therefore, there are two kinds of the education in the world. One is a material knowledge and the other is a spiritual knowledge. Therefore, what we are doing justice with regard to the material aspects of the human beings, human relations, related disputes, whether it is a constitutional or civil, criminal, taxation, it's a labor or service or family matters, whatever it may be, it all deals with the human relations, human beings and material issues. But nobody knows what is the spirit. Therefore, the spirit is different from this human body. But every human being is a spiritual being. Therefore, spirit, the entire education, entire justice is for the well-being of the spirit and for the peace of the spirit and for the solace of the spirit and for the solution of the spirit. But forgetting these things, we are searching somewhere else while doing the justice, while in the process of the dispensation of the justice. Therefore, to have a complete justice with regard to the justice delivery system, one should know the spiritual knowledge. Because the spirit, whether the crime or any wrong or any corruption or any the conflict is based on the quality of the internal being, impurity of the internal being. And therefore, when the internal being is forgotten and we are fighting for the material things, so the spirituality is most important in dispensation of the justice. Unless one is having the spiritual knowledge, he cannot give the impartial justice, thinking that stepping into the shoe of both the parties belongs to as a close relative of the justice, as a brothers, as a children, as elders or younger. Therefore, he should think that he is his own brothers, then he should give an impartial the decision as a father, as a deity, as a spiritual justice. And therefore, in dispensation of the justice, spirituality is more important. And Bhagavad Gita says that all human beings are the spiritual beings. And there is a universal, the brotherhood, Vasudhaika Kutumbakam, children of the one God, children of the one progeny, then we belong to our forefathers are the very celestial divine beings, where there was no need of any courts or any this kind of the departments, but when they were the spiritualized, when there were the spiritual beings, when there are deities, when they used to give to others, to contribute to the nature, but when the spiritualness is missed from their daily practice life, and this kind of the selfishness and this kind of the self-centeredness has come, and therefore the laws have been made maybe 250 years back. Otherwise, 500 years back, 1000 years back, 2000 years back, there are no courts, no judges and no advisors. Because when we are keeping away from the spirituality and searching for the solutions externally, and we are unable to find the real solution and do the real justice. Therefore, I thank the organizations for selecting the spirituality in dispensation of the justice, which is the need of the hour, which is the need of the present days, and all of us know that how the world is changing, the lifestyle is changing, the scenario is changing. Therefore, we have to face the tests, the challenges. Today is a COVID-19 epidemic. Tomorrow may be the civil war, or atomic war, or natural calamities. Therefore, we spirituality, if we have the spiritual knowledge, the soul never dies, is indivisible, indestructible, eternal. It cannot be born, it cannot be burned, and it cannot die. Therefore, it's only once we know the spirituality, we will not have any fear or insecurity or any question in our mind, because the soul is eternal, only changes the dress and address. Therefore, there is no fear of any death. And all of us should also know the knowledge that matter cannot be created and cannot be destructed. It never perishes, but it changes the forms. It changes the various forms. Then it becomes a solid, it becomes soluble, and only it becomes a vapor or water or solid. Only it changes its forms, but it never changes. Matter is eternal. As matter is eternal, and the soul is eternal, human beings are eternal. It's a drama, the world drama cycle. The change is coming for the new beginning. We should be prepared for to invite the new beginning and to change the challenges. Therefore, my sincere, my opinion or advice for the jurists, especially the honorable judges and the honorable, today's honorable chief guest, Dr. Justice Pushpendra Singh Bhati, I'm very happy to know that he practices the spirituality. But I would like to emphasize that there is a difference between the religion and the spirituality. Spirituality is not religion. Religion deals with the human beings and the human, this cult. But the spirituality, there is no difference for one religion to one another, one country to another, one human being to another. Therefore, spirituality connects all the human beings as his own brothers and creation of the one God. And that's how there are conflicts because of the religion, caste, community, religion, race, and ethnic language, several other aspects. These disputes are arising, conflicts are arising. Only solution is the spirituality. Spiritual education is only solution and ultimate solution for getting the real justice. As I rightly said, that whatever while dispensing the justice, we should be conscious that I am a spiritual being. Once we feel that I am a spiritual being, then while delivering the justice, while dispensation of the justice, then we will get the pure thoughts, solutions, quick solutions for the problems, quick understanding to the problem, and immediate answers we will get, and therefore that's how I was able to dispose of 69,000 cases in my 14 years of service as an High Court judge. I never applied leave, I never fell ill, because we should keep our body also fit for a spiritual elevation. Therefore, I used to have the patient hearing, quick understanding, and immediate delivery of the judgment on the bench itself. I never used to carry anything to the house, and I used to finish off my job, and I used to forget what happened yesterday. So no prejudice against anybody, what caste you belong to, what community you belong to, what party you belong to, and whether it is a junior or senior, because nowadays tendency has come, when a senior designated lawyer comes, judges pay special attention. When a junior most comes, and he is not received with the same respect and same concern. Therefore, in my court, the juniors were feeling very happy and comfortable, and they used to then advance the arguments. Whether they assist the court or not, I used to read the file, entire file, understand, and immediately give the judgment. And I am very happy to inform you that a person who used to lose the case also used to satisfy, and a person who used to win also will have the same satisfaction, because they used to know that here is a judge who hears impartially, patiently, understands, and will not insult the lawyers, and he can't be influenced, he can't be managed, he can't be manoeuvred, and he can't be, so there was no kind of any attempt to test on me. But nowadays I have to reveal that now there are some black sheep in the highest judiciary, right from the Supreme Court to the lower court. Therefore, they doesn't know the karmic account, they doesn't know what will be the reaction, repercussion of their unrighteous, prejudicial judgments. Therefore, one should know the karma philosophy also. As Newton said, every action will have equal and opposite amount of the reaction. Every karma, we are answerable for our every karma. And this iron age, this sinful age, this criminalized age is going to an end, and to have our seat in the next age to come, a golden age to come, a deity age to come, a Krutayuga is to come, we should be qualified and we should be entitled. We should imbibe such kind of the qualities, characters, divine qualities. Therefore, real earning is not material earning, and this post position, money, material, nothing comes along with us, but our samskaras only will come. Therefore, while dispensing the justice, earn something else to carry for the next world or next birth. Thank you.
Special thanks to Justice Aishwarya Ji for sharing his insights and making us understand today's subject. ये बड़ी ही हर्ष और गौरव की बात है कि आज हमारे विशेष अतिथि के रूप में आज के हमारे चीफ गेस्ट न्यायमूर्ति डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी जुड़ रहे हैं। आप राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में न्यायमूर्ति के पद पर नियुक्त हैं। आइए जस्टिस भाटी जी से सुनते हैं उनका अनुभव युक्त वक्तव्य।
स्पिरिचुअलिटी इन जस्टिस आज की तारीख में एक अत्यंत महत्वपूर्ण, सकारात्मक और आज के ज्वलंत समय में, जब हम कोविड पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसपे समाज के अंदर, देश के अंदर, विश्व के अंदर एक चर्चा होनी अत्यंत महत्वपूर्ण भी है और लाभकारी भी है। मैं ब्रह्मकुमारी ऑर्गेनाइजेशन से कई वर्षों से जुड़ा रहा और कई बार कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बातचीत करने का मौका मिला। माउंट आबू मेरी पत्नी के साथ आकर के मैं रहा, जहां भी कई विद्वानों को सुनने का भी मौका मिला, और मुझे खुशी है कि विद्वता से भरे हुए समाज के इस अंग से आज अंग ने यह आज इस बिंदु को उठाया है और इस बिंदु पर बातचीत करने का आज ये अवसर मुझे प्रदान किया। समाज के अंदर स्पिरिचुअलिटी की एक अपनी जगह रही है। जब से मानवता का विकास हुआ, हमेशा उस विकास के अंदर अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी का एक बड़ा रोल रहा, और साथ ही जस्टिस डिस्पेंसेशन का भी एक बड़ा रोल रहा। जस्टिस डिस्पेंसेशन यूं तो समाज को न्याय देने के लिए, विधिक व्यवस्था के तहत उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, और समाज की कुरीतियों और समाज में मौजूद समस्याओं को दूर करने के लिए प्रबल बना रहता है। परंतु स्पिरिचुअलिटी, जिसकी वैसे अगर हम परिभाषा देखें तो वह जो जिसे भी हम गॉड या ईश्वर या जो हम एक नाम जिसे हम दें, जिससे जोड़ने के लिए हमारे को एक अवसर प्रदान करती है। यह एक अद्भुत बात है कि सिस्टम ऑफ जस्टिस या रोल ऑफ जस्टिस को समाज ने एक वर्ड दिया है डिवाइन, और डिवाइन वर्ड जो है वो इटसेल्फ इस बात को इंडिकेट नहीं करता कि जस्टिस का काम जो है वो जो भी व्यक्ति वहां उस जज के पद पर बैठा हो वह कोई भगवान बन गया, लेकिन यह जरूर है कि वह एक ईश्वरीय काम को अंजाम दे रहा है और उसको उतनी ही न्यूट्रैलिटी, उतनी ही बुद्धिमत्ता, उतनी ही व्यापकता और उतनी ही बड़ी सोच का परिचायक होना आवश्यक है, तभी वह जस्टिस डिस्पेंसेशन के काम में अपने योगदान को ढंग से दे सकता है। चाहे वह जस्टिस डिस्पेंसेशन के अंदर एक न्यायाधीश हो या एक अधिवक्ता हो या विधि की पढ़ाई से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, हमेशा यह चीज इन सबके मन में हमेशा स्पिरिचुअलिटी के रूप में यदि अगर एक कॉमन कॉज या एक कॉमन गुडनेस की एक वेल्थ अगर रहेगी तो उससे हमेशा एक अच्छा विकास, एक अच्छा सकारात्मक रूप में विधि का देखने को मिलेगा। और विधि हमेशा समाज की प्रतिबिंब है, और इसलिए ऐसे प्रतिबिंब के अंदर यह आवश्यक है कि हम स्पिरिचुअलिटी को समझें कि किस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी का रोल जस्टिस डिस्पेंसेशन के अंदर रहा है। इसको समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि द गोल, कि गोल दोनों में स्पिरिचुअलिटी का क्या गोल है और जस्टिस डिस्पेंसेशन का क्या गोल है। स्पिरिचुअलिटी का गोल हमेशा मानवता को सुकून देना, मानवता को इस बात के लिए बताना, मानवता को यह बताना कि किस प्रकार से हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं और किस प्रकार से हम अपने अंदर की आत्मा को पहचान करके, अपने सेल्फ कॉन्शियस को पहचान करके, उस कॉन्शियस के बेस के ऊपर अपना काम कर सकते हैं। यही कॉन्शियस, यही मानवता, यही ईश्वरीय शक्ति, यही ईश्वरीय शुद्धता विधि के क्षेत्र के अंदर, चाहे वो जस्टिस डिस्पेंसेशन हो जिसके अंदर कई अंग हैं, उन सबके अंदर यह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सवाल यह आता है कि जस्ट लॉ जो बना वो कस्टम्स से उसकी शुरुआत हुई, और कस्टम्स के बाद मॉरलिटी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम और विधि को स्थापित करने के लिए। कस्टम और मॉरलिटी वह पुरातत्व ब्रिज का काम करते आए हैं, जिन्होंने हमेशा विधि को एक रास्ता दिखाया, विधि को एक जगह दिखाई, और कहीं यदि कस्टम्स के अंदर या मॉरलिटी के अंदर यदि कोई कमी थी, उनके सशक्तिकरण की आवश्यकता थी, तो उस सशक्तिकरण को पूर्ण किया जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम ने। और यही जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम इसीलिए समाज का एक महत्वपूर्ण अंग और गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण अंग, चाहे कैसा भी विकसित, अविकसित, पूर्ण विकसित, अर्ध विकसित, जैसा भी देश हो, संसार के हर कोने के अंदर इसकी एक विशिष्ट भूमिका रही है। यदि हम मॉरलिटी और कस्टम्स की बात करें तो मॉरलिटी और कस्टम का जुड़ाव सीधा स्पिरिचुअलिटी से भी वैसे ही है जैसा जस्टिस के साथ। और इसका कारण यह है कि कस्टम्स के अंदर हमने ऐसी चीजें हमारे जीवन के अंदर होने, ऐसी चीजों को हमने अपनाया जिनको हमने कस्टम्स का नाम दिया, और हमने उनको ऐसा अपनाया कि जैसे हमने कहा कि पेड़ की पूजा करें, या कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए किसी भी, ऐसा जरूरी नहीं कि हर आदमी की पेंटिंग हो जाए, पर जैसे हमने सूरज को, प्रकृति को, चांद को, तारों को, भूमि को, पेड़ को, नदी को, हमने एक विशेष जगह दी, किसी कस्टम में दी, या हमने उसको एक कस्टम माना कि हमने जो है वो ये इसलिए दी हमने क्योंकि इन सब चीजों का, प्रकृति का जुड़ाव अल्टीमेटली इन सब चीजों का जुड़ाव ईश्वर से है, और ईश्वर तक पहुंचने के लिए चूंकि स्पिरिचुअलिटी एक रास्ता है, तो उस स्पिरिचुअलिटी तक अगर मान लीजिए कि हर व्यक्ति डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता, हर व्यक्ति की पकड़ अगर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर नहीं है, तो भी हम उसको कुछ ऐसे कस्टम्स के द्वारा ऐसे हम उनको उसको एजुकेट कर सकते हैं, हम उसको इस बात की शिक्षा दे सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है उन कस्टम्स को फॉलो करते हुए ऐसी अद्भुत शक्ति जो है उस तक पहुंच सके और उसको प्राप्त कर सके या उस रास्ते पर अग्रसर हो सके। जब हमारे को ये मॉरलिटी में सिखाया जाता है कि एक परिवार का क्या महत्व है, एक पिता पुत्र के रिश्ते का क्या महत्व है, एक माता पुत्री के रिश्ते का क्या महत्व है, या पति पत्नी के रिश्ते का क्या महत्व है, जब हमको ये सब चीजें हमें मॉरलिटी के अंदर सिखाई जाती है या कस्टम के अंदर सिखाया जाता है, तो हम उस कस्टम और मॉरलिटी से हम जब आगे बढ़ते हैं तो आता है, जब समाज आगे बढ़ता है, विकसित होता है, तो आता है, तो विधि का क्षेत्र आ जाता है, जस्टिस डिस्पेंसेशन का क्षेत्र आ जाता है। जस्टिस डिस्पेंसेशन के अंदर हम हमेशा भले ही कानून का हम कितना भी पालन स्ट्रिक्टली कर लें, लेकिन हमेशा बहुत सारे ऐसे परिप्रेक्ष्य होते हैं जो कानून से बाहर निकल करके और न्यायाधिपति और अधिवक्ता और जस्टिस डिस्पेंसेशन से जुड़े हुए अन्य उपक्रमों को यह ध्यान में देखना, उनको ध्यान में रखना पड़ता है कि किस प्रकार से उन बिंदुओं को सुलझाया जाए। आज की तारीख में जितनी भी चुनौती समाज के समक्ष हैं वो सब जस्टिस डिस्पेंसेशन के रूप में हमें देखती है, तो उन सभी चुनौतियों को यदि अगर हमने एक तरह से अगर उनका उत्तर लें तो उनका उत्तर स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी, और स्पिरिचुअलिटी ये एक उत्तम मार्ग है जिसके जरिए आप समाज को और विश्व को और मानवता को आगे भी बढ़ा सकते हैं और उनकी वास्तविकता से उनको रूबरू भी कर सकते हैं। यही काम जो है अगर हम समझें तो यही काम हम मानवता के रूप में, हम विधि के क्षेत्र में या जस्टिस डिस्पेंसेशन के क्षेत्र में भी यही काम उसी तरीके से होता है, और लगभग लक्ष्य जो है वो वही होता है, क्योंकि लक्ष्य अपने आप को जानना, अच्छा जीवन जीना, अच्छे विचार रखना, अच्छा समाज होना, शांतिप्रिय समाज होना, सब लोगों को अच्छाइयों से रूबरू कराना, यही सब चीजें, और उनकी अधिकारों का रक्षा करना और उनके अधिकारों को समझाना, और स्व को भूल करके और कम्युनिटी को या सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का जो लक्ष्य है वह लक्ष्य कॉमन है स्पिरिचुअलिटी के अंदर और जस्टिस डिस्पेंसेशन। स्पिरिचुअलिटी भी यही चाहती है कि आप अपने आप से ईश्वर का जब कनेक्शन सही रूप से शायद जान लें तो आपको ये वास्तविक तौर से पता जाएगा कि किस प्रकार से हमें सभी मनुष्यों का कल्याण या सभी समाज का जो व्यापक कल्याण है उसकी तरफ आपका मार्ग प्रशस्त होता जाता है। आप अपने आप से शुरू करते हैं लेकिन इन दोनों ही मार्गों पे आप समाज की और मानवता की और विश्व की और विश्व की अच्छाई के लिए आप आगे अग्रसर हो जाते हैं। अगर आप जस्टिस डिस्पेंसेशन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसको मैं एग्जाम्पल की तरह लूं, तो जैसे फंडामेंटल राइट जो हमारे संविधान के अंदर दिए गए, तो फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल राइट्स भी हमारे स्पिरिचुअल की, हमारे स्पिरिचुअलिज्म के चैप्टर्स में से, स्पिरिचुअलिज्म के किसी अंग से, स्पिरिचुअलिज्म की किसी ब्रॉड पिक्चर में से बोरो की गई। जैसे अगर हम, वैसे तो हम संविधान के अन्य अधिकारों की भी चर्चा कर सकते हैं लेकिन सीमित समय के अंदर हम जब बात करें तो हम जैसे हमारे संविधान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुच्छेद 14 की बात करें तो हम समानता के अधिकार की जब बात करते हैं तो समानता का अधिकार वास्तविक रूप से तभी फलीभूत हो सकता है एक फंडामेंटल राइट के रूप में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में, एक रूल ऑफ लॉ के, एक डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के स्ट्रॉन्ग आर्म के रूप में तभी फलीभूत हो सकता है जब हम समझें कि राइट टू इक्वालिटी ट्रू सेंस के अंदर ह्यूमैनिटी के अंदर आनी आवश्यक है। हम यह समझें कि राइट टू इक्वालिटी अंदर से आनी जरूरी है। हम यह समझें कि राइट टू इक्वालिटी एक जने के मामले से नहीं होगी, जब ज्यादा लोग समाज का एक मेजोरिटी ऑफ पर्सन जो है वो जब उस मार्ग पे चलेंगे, राइट टू इक्वालिटी की सोच रखेंगे, राइट टू इक्वालिटी को अपने अंदर इन्वाइट करेंगे, राइट टू इक्वालिटी पे अपना समस्त अपने कार्यक्षेत्र को उस पर अपने उस पर जब उसको उसको और अग्रसर करेंगे तभी जाकर के और हम उस गोल को प्राप्त कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं आप देखें कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी अब अल्टीमेटली हमको सबको समानता का वह लेसन सिखाती है और ये बताती है कि ईश्वर के लिए सब समान है और हम सब ईश्वर को यदि अगर सही रूप से साक्षी मान करके अगर उनकी तरफ बढ़े और अपनी आत्मा को उनसे जोड़ने का प्रयास करें तो हम सबको विश्वास है कि हम सब उस आदर्श समाज की ओर आगे बढ़ सकते हैं, उस आदर्श विश्व की ओर आगे बढ़ सकते हैं जिसकी कल्पना हम अच्छे युग के रूप में या अच्छे समय के रूप में हम कई बार करते हैं। आर्टिकल 14 की बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहता हूं कि आर्टिकल 14 के अंदर जो समानता का अधिकार इम्पाइट है वो न केवल एम्प्लॉयमेंट के लिए है, न केवल फैमिली के लिए है, न केवल विधिक क्षेत्र के लिए है, बल्कि हर उस क्षेत्र के लिए है। और इसका जो बेसलाइन है वो हमेशा ये रहा है कि यदि अगर किसी समाज के अंदर यदि आप भेदभाव मिटा सकेंगे, यदि अगर एक समानता का भाव रहेगा तो समाज के अंदर ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा पीस और ज्यादा ईश्वरीय शक्ति जो है वो कायम रहेगी। आप आर्टिकल 15 की बात करें तो उसमें भी इसी प्रकार के भेदभावों को दूर करने की बात जो है वो संविधान में कही गई है, क्योंकि भेदभाव वह शब्द है जिस जो स्पिरिचुअलिटी के एंटीथेसिस के रूप में काम करता है और स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर जब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो जस्टिस डिस्टेंस तो जब वो जस्टिस डिस्टेंसेशन से आगे जुड़ जाता है क्योंकि कॉमन गोल की तरफ जब वो आगे बढ़ते हैं तो कॉमन गोल यही है कि हम ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा एक अच्छा पीसफुल समाज प्राप्त करें। अब आर्टिकल 16 की बात करें तो 16 के अंदर भी समानता का वही अधिकार जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में है। आज कर्म जो है जहां आप कार्य करने जाते हैं वहां आपको ये संतोष होना चाहिए कि सबका सब जो भी वर्गीकरण है वो सारा समानता के आधार पर है। इसीलिए आर्टिकल 16 भी आर्टिकल 14 15 के साथ वही समानता की उस सुंदर समानता की उस सुंदर प्रक्रिया को अपनाता है जो कहीं ना कहीं जिसका ओरिजिनेशन जो है स्पिरिचुअलिज्म से। जब हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, स्लेवरी की बात करते हैं तो वो भी वो आर्टिकल्स हैं जिनके अंदर हमने उन कुरीतियों जिनको हमने जो शायद समाज के द्वारा बनाई नहीं गई थी लेकिन समय के साथ साथ हमने उनको अपने अंदर अपने जीवन के अंदर भर लिया, लेकिन कानून की मदद से हमने उनको दूर हटाया, संविधान की मदद से हमने उनको दूर हटाया क्योंकि इन कुरीतियों से हम स्पिरिचुअलिज्म से दूर जा रहे थे। और जैसे ही हमारा मार्ग हम उस बड़े मार्ग के अंदर एक छोटे मार्ग पर चलते रहेंगे तो भी हमारा मार्ग सही प्रशस्त होगा, लेकिन अगर हम उसके विपरीत मार्ग पर चलेंगे तो समाज कल्याण या विश्व कल्याण जो है वो एक दूर की बात हो जाएगी और उसको प्राप्त करना जो लक्ष्य है आज पूरे मानवता का वह असंभव साबित होगा। इसीलिए स्लेवरी, अनटचेबिलिटी जो हमारे बाकी के आर्टिकल्स हैं उन्होंने एक अद्भुत काम करके दिखाया। हमने लगभग जो है वो विश्व के बड़े हिस्सों में, देश के बड़े हिस्सों में, विश्व के बड़े हिस्सों में लगभग इन कुरीतियों को लगभग समाप्त होता रहता है क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म के अंदर अनटचेबिलिटी, स्लेवरी या इन चीज कोई जरूरत नहीं है। ये वो फंडामेंटल्स हैं जो इस रोड को ले डाउन करते हैं, जो इस पाथ को ले डाउन करते हैं, जो उस दिशा को दिखाते हैं, जो हमको ये समझाते हैं कि इन फंडामेंटल्स पे यदि अगर हम चलेंगे तो ही विश्व कल्याण जो हो सकता है। इसके आगे जब हम राइट टू स्पीच पर आते हैं जो कि एक फंडामेंटल राइट का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है चैप्टर 3 है, तो राइट टू स्पीच बोलने का अधिकार, आप अपने एक्सप्रेशन का अधिकार, आप अपनी बात को कहीं पर भी समाज में रख सकें, फ्रीली रख सकें और अपनी बात को समझदारी पूर्वक कहीं पर भी कह सकें, ऐसा अधिकार भारत के संविधान में अलग अलग कंपोनेंट में हमको दिखा। स्पिरिचुअलिज्म भी जब अगर इसी मार्ग पर हम चलते हैं तो स्पिरिचुअलिज्म भी यही कहता है कि यदि व्यक्ति को उसके अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए और अभिव्यक्ति का तरीका उसका भले अगर अलग अलग हो तो भी उसको उस अभिव्यक्ति को पूर्ण करने के लिए उसके पास एक पर्याप्त जगह होनी चाहिए। अगर आप और कुछ आर्टिकल्स की बात करें जैसे राइट टू लाइफ वह संविधान का सुंदर अनुच्छेद है जिसमें स्पिरिचुअलिज्म सबसे ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि आज हिंदुस्तान में संविधान के अनुच्छेद 21 की जितनी व्याख्या की गई उसमें शिक्षा का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, पॉवर्टी को खत्म करने का अधिकार, उसमें आपको जो है वो न्याय, त्वरित न्याय का अधिकार, उसके अंदर जो है वातावरण, शुद्ध वातावरण का, प्रकृति का अधिकार, और इस प्रकार से अनुच्छेद 21 के अंदर स्पिरिचुअलिज्म से निकली हुई वह सैकड़ों जड़ी बूटियां जो है वह इसके अंदर धीरे धीरे करके मर्ज होती गई और राइट टू लाइफ जो जीवन जीने का अधिकार है उस अधिकार को अत्यंत प्रबल करके शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण अधिकारों से जोड़ करके हमने और उसको इतना व्यापक और इतना शुद्ध और इतना मजबूत बनाया कि आज उस अधिकार का भारत के विकास और भारत के विकास के अंदर, भारत की प्रोग्रेस, भारत के जो आगे आने वाला जो युग है उसके अंदर जाने में उसका एक बहुत बड़ा सहायक वो जो है अनुच्छेद 21 का है। अनुच्छेद 21 की बात जब हम करते हैं तो हमारे को बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी के कई ऑर्गन्स को, स्पिरिचुअलिज्म के कई ऑर्गन्स को, कई अंगों को हमने यूं अंगीकृत कर दिया आर्टिकल 21 के ऊपर, जहां हमने ये देखा कि जहां भी हमने देखा कि मानवता जो है उसके अंदर कोई ऐसी समस्या आ रही है जो उसको आगे बढ़ने में, विकास करने में, या उसको ऐसी जगह धकेल रही है जहां उसको नहीं जाना चाहिए, और जहां ईश्वर को साक्षी मान करके हम नहीं जाना चाहते और हम नहीं पहुंच सकते, और जो समाज के पूर्णतः जो है अवसरों पे आगे बढ़ने की उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो हमने उसको दूर करने के लिए, उन अधिकारों को सुदृढ़ बनाने के लिए हमने आर्टिकल 21 पे का इतना व्याख्या जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम के जरिए, सिस्टम ऑफ जस्टिस ने आर्टिकल 21 को सबसे एक्सपेंड किया। मैं यहां ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह स्पिरिचुअलिज्म ही है जिसकी वजह से किसी और कानून की इतनी व्याख्या नहीं हुई जितनी आर्टिकल 21 की, क्योंकि जीवन जीने के अधिकार के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज से लगा करके, ढंग के कपड़े पहनने से लगा करके, खान पान से लगा करके, खाने पीने के लिए सबको सामान उपलब्ध हो और से लगा करके सभी सभी जो मूलभूत चीजें उनके ऊपर जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम ने एक बहुत ही सुंदर काम किया है और आगे भी बहुत ही एक व्यापक काम किया जा रहा है, और यही वह काम है जिसको हम सीधा एक ईश्वरीय शक्ति के रूप में, एक ईश्वरीय काम के रूप में जोड़ सकते हैं। और यह काम सीधी तरह से अगर हम समझें तो जैसा मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिज्म से अराइज होने वाली बहुत सारी जो शक्तियां हमें प्रदान होती हैं, अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिज्म का जो गोल है कि ह्यूमन बींग जो है यू शुड गो नियर टू द गॉड, यू शुड कंबाइन विद द गॉड, इट इज नॉट नेसेसरी कि ही बिलोंग्स टू विच कास्ट, रिलीजन और विच बिलीव, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू कंबाइन विद डिवाइन पावर। And remember, this word divine is common between spirituality and justice. So this common bridge which is arriving, एक और example हम ले सकते हैं, article 25 का ले सकते हैं, 26 का ले सकते हैं, जहां हमने धर्म की आजादी को पूरी तरह से हमारे नागरिक के लिए हमने पूरी तरह से उसको मजबूत बनाया। एक तरफ हमने संविधान के अंदर प्रियम्बल में हमने हमारे देश को कहा सेक्युलर, यानी कि जो भी गवर्नेंस हो वह गवर्नेंस जो है वह इससे गवर्नेंस हमेशा किसी भी धर्म से या किसी भी जाति से या किसी भी ग्रुप से गवर्नेंस दूर होगी, वो आर्टिकल 14 पे चलते हुए सबको समान समझते हुए करेगी, लेकिन गवर्नेंस का काम गवर्नेंस करे, लेकिन आदमी के जीवन में जो भी विश्वास, जिस भी भगवान पर उसे विश्वास हो, जिस भी ईश्वर पर उसकी मान्यता हो, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति, चाहे किसी की सोच का व्यक्ति हो, उन विश्वासों को मजबूत बनाने के लिए हमने मौलिक अधिकारों के अंदर आर्टिकल 25-26 जैसे आर्टिकल्स को रखा, और हमने वो उन अधिकारों को और स्पष्ट, सुदृढ़ और मजबूत बनाया। और मजबूत इसलिए नहीं बनाया कि हम ये चाहते थे कि हम जो है वो धर्म का प्रचार करें, लेकिन मजबूत इसलिए बनाया क्योंकि धर्म, चाहे कोई भी धर्म हो, धर्म से ही शुरुआत होती है स्पिरिचुअलिटी, धर्म भी एक मार्ग है मॉरलिटी और ट्रूथ की तरफ, जहां से हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर पढ़ते हैं। अल्टीमेटली इट इज द गोल इज सेम, अल्टीमेटली द पाथ इज सेम, जब हम उस सेम पाथ को पहुंचाते हैं और सेम पाथ को हम जब समझने की प्रयास करते हैं तो हमें समझ में आता है कि धर्म किसी पथ, किसी छोटी सोच या किसी ऐसे मार्ग की ओर हमें प्रशस्त नहीं करता जहां केवल हम जो है वो एक छोटे से समुदाय से बंद करके रह जाए, बल्कि धर्म का जो अल्टीमेट गोल है वो है अच्छी शक्तियों, ईश्वरीय शक्तियों से जोड़ना, विश्व में शांति कायम करना, विश्व के अंदर जो है वो हर व्यक्ति को आपस में एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम भाव बढ़ाना, लोगों को अच्छी तरह से रखना, ये सब चीजें हमारे को धर्म से। मूलतः कोई भी धर्म आप जब जाएंगे तो वह शांति का प्रतीक होता है, ईश्वर का प्रतीक होता है, विश्वास का प्रतीक होता है और समाज कल्याण का, विश्व कल्याण का प्रतीक होता है। और इसीलिए इन अनुच्छेदों में कानून की जो व्याख्या है उस कानून की व्याख्या में स्पिरिचुअलिज्म का एक बड़ा रोल है। सवाल यह आता है कि जब ईश्वर के बारे में हम सोचते हैं तब हम उन ईश्वर के बारे में सोचना क्या है, आखिर ये गोल क्या है, स्पिरिचुअलिज्म है क्या। अगर हम आम आदमी की भाषा में समझें तो हम हमारे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसके अंदर कमियां नहीं होती, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसके अंदर जो है वह कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसको वह हटाना ना चाहे। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी कमियां होती हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, चाहे वो उसके गुस्से से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है। लेकिन अगर जिस भी व्यक्ति के अंदर जो कमी है, अगर उसके विचारों के अंदर कोई कमी है, यदि अगर उसकी समझ में कोई कमी है, उसको दूर करने के लिए हम जो शिक्षा से, अवेयरनेस से, जानकारी से हम जब उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, तो हम जब बुराई को अपने आप से दूर करने का प्रयास करते हैं, जो कोई भी व्यक्ति हो जो अपने अंदर से किसी भी बात को अगर जो उसको समझ में आती है कि इस अगर उसको समझ में आती है कि यह बात मेरे लिए या समाज के लिए या विश्व के लिए सही नहीं है, तो वो उस बात को दूर करने का प्रयास करता है। उस बात को दूर करने के लिए उसको अपने खुद के लेवल से ऊपर जाना पड़ता है। जब वो अपने खुद के लेवल से ऊपर जाने का प्रयास करता है, तो वह जो है स्पिरिचुअलिज्म के मार्ग पर ऑटोमेटिकली चल पड़ता है। जो हायर स्पिरिचुअलिज्म है, वो हायर स्पिरिचुअलिज्म बहुत ही अलग दिशा, बहुत ही अलग विद्वानों के द्वारा, बहुत ही अलग तरह के जो उच्च श्रेणी मानव है उनके द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन हायर स्पिरिचुअलिज्म से नहीं तो भी कॉमन मैन, जो आम आदमी है हमारे घर, उस आम आदमी के दिनचर्या के अंदर, उस आम आदमी के अंदर भी एक स्पिरिचुअलिज्म की ज्योत हमेशा रहती है, जो हमेशा उसे बताती है कि ये मार्ग सही नहीं है, ये मार्ग सही है। और उसी ज्योत पे चलने का सबसे बड़ा मार्ग जो है वो जस्टिस डिस्पेंसेशन है। मैं मानता हूं कि जस्टिस डिस्पेंसेशन वो मार्ग है जहां व्यक्ति को यह निश्चल भाव से, बिना किसी भेदभाव के, हमेशा यह समझना पड़ता है कि किस प्रकार से वह न्याय के रथ को, सभी विधि से जुड़े हुए व्यक्ति न्याय के रथ को किस प्रकार से आगे बढ़ाए कि समाज में एक समानता, समाज में एक शांति, समाज में एक प्रोग्रेस, समाज में एक विश्वास जागृत हो। और यह सभी चीजें जो है वापस हमारे को, जब एक हम पूर्णतः सोचकर अगर इसको समझते हैं, तो स्पिरिचुअलिज्म के अंदर हमें समझ पाएंगे कि यह किस प्रकार से सब चीजें एक दूसरे के अंदर गुथी हुई है, और किस प्रकार से यह जिस अगर न्याय का चक्के में अगर जस्ट अगर स्पिरिचुअलिटी के स्पोक्स नहीं होंगे, अगर उसका उसमें धुरी में अगर स्पिरिचुअलिज्म नहीं होगा, तो वो चक्का जो है उसके अंदर आम आदमी का विश्वास कभी कायम नहीं हो सकता। आज हम ये मान के चलते हैं समाज के अंदर न्यायपालिका के लिए, विधि जगत के लिए एक बड़ा सम्मान है, समाज में गहरा विश्वास है, यदि परिवार के अंदर, पड़ोस के अंदर, बिजनेस के अंदर, कहीं भी समाज के किसी भी कोने में यदि अगर कोई अवरुद्धता आ जाती है, यदि कोई चीज रुकने लगती है, तो वह चाहे परिवार हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वह हमेशा न्यायालय या न्याय प्रक्रिया की ओर देखता है, क्योंकि वह न्याय प्रक्रिया को वह रास्ता मानता है जहां से वह सही जगह पहुंच सके। यह हर जगह को पता है कि न्याय की प्रक्रिया के अंदर हमेशा हार या जीत इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन सही निष्कर्ष पर पहुंचना, पहुंचने का प्रयास जो है वह उस सही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस प्रयास को, सही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास जितना स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ होगा, मैं वापस ये क्लियर कर देना चाहता हूं, स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन कि आप किसी एक पर्टिकुलर विश्वास से चले। स्पिरिचुअलिटी मीन जनरली, यदि अगर आप संसार की अच्छाई और ईश्वर को प्राप्त करने की चाहत लेकर के यदि आगे बढ़े और उस मार्ग पे, खास करके जस्टिस डिस्पेंसेशन के मार्ग से, यदि अगर आप उस सोच के साथ यदि निष्कर्ष पर पहुंचे, तो उस निष्कर्ष पे समाज स्पिरिचुअलिटी से डायरेक्टली जुड़ जाता है, क्योंकि उसका विश्वास हो जाता है कि जो भी निर्णय है सही है, और इससे समाज के अंदर शांति भी कायम होती है और समाज के अंदर प्रोग्रेस भी कायम होती है। तो यूं देखने के अंदर स्पिरिचुअलिटी और समाज जो है वो अलग अलग अंग दिखते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी का एक बड़ा रोल जस्टिस डिस्पेंसेशन के अंदर हमेशा है। यह कहना सही है कि सत्य के मार्ग पे, ईश्वर के मार्ग पे, शुद्धता के मार्ग पे, शांति के मार्ग पे, समझ के मार्ग पे जो गाइडिंग फोर्स है, वो गाइडिंग फोर्स स्पिरिचुअलिज्म है। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब नहीं कि कोई एक ही मंत्र या एक ही तरह का की कोई पद्धति। स्पिरिचुअलिज्म मीन्स समथिंग विच इज टेकिंग यू एट द राइट पाथ, जो इविल को अलग करे, गुड को अलग करे, डार्कनेस को दूर करे और ब्राइटनेस को हमारी जिंदगी में लाने का प्रयास करे। उस ब्राइटनेस की जो खोज है, उस ब्राइटनेस की जो व्याख्या है, वह अल्टीमेट गोल जस्टिस डिस्पेंसेशन का बना रहे। जस्टिस डिस्पेंसेशन के प्रति आम जनता का भाव बना रहे, आम जनता यह मान के चले कि यह वह ईश्वरीय शक्ति है जो कार्य कर रही है। इससे इसका मतलब यह नहीं कि इस ईश्वरीय शक्ति से जुड़े हुए मानव जो है वो ईश्वर हो गए। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि वह मार्ग ईश्वरीय मार्ग है, यदि अगर हम उस पर चले तो जो कमियां हैं, जो अवरुद्धता है उनको दूर करें और कानून, न्याय, विधि, इन सब के मार्ग पे, मार्ग जो जटिल मार्ग है उस जटिल मार्ग पे, क्योंकि आज के युग में जब समाज में इतनी कुरीतियां भी साथ के साथ फैल गई, समाज के अंदर कई बड़ी चुनौतियां, जैसे आज यंगस्टर्स के सामने ड्रग्स की समस्या और इस तरह से खान पान की समस्याएं, मीडिया की समस्याएं, इस प्रकार से व्यापक समस्याएं सारे संसार में, आज आप अपन सब देख रहे हैं कि इतना बड़ा पेंडेमिक से सारा विश्व गुजर रहा है। पेंडेमिक के अंदर ऐसे कई चीजें हैं जो आज सभी सारे मानवता को एक तरह से चेतावनी दे रही है कि आप विज्ञान और विज्ञान का कितना भी विकास कर लो, लेकिन जब ईश्वरीय चुनौती होगी, जब कोई इस प्रकार से कोविड जैसी चीज, ऐसी कोई बड़ी चुनौती हमारे सामने आएगी, तो उसको फेस करने के लिए हमारे पास जो आंसर है वो स्पिरिचुअलिज्म है। और स्पिरिचुअलिज्म का आंसर का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति जो है वो केवल उसको एक कोर फॉर्म के अंदर ले ले कि स्पिरिचुअलिज्म एक कोर फॉर्म के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है। हमारे दैनिक चर्या के अंदर एक जो लेबर भी जो एक फैक्ट्री के अंदर काम करता है वो भी स्पिरिचुअलिज्म से अपना काम करता है। वो सुबह जब झुक के निकलता है, उसका अपने रोजी रोटी के प्रति जो भाव होता है, उसका अपने परिवार के लिए कमाने का जो भाव होता है, उसका अपने उत्पादन के लिए, अपने अपनी जो भी चीज वो कार्य कर रहा है, उस कार्य के प्रति जो निश्चलता होती है, उस कार्य के प्रति उसका जो कमिटमेंट है, उसकी जो सिंसियरिटी है, ये सब वो क्वालिटीज हैं वो जो ओरिजिनेट होती हैं स्पिरिचुअलिज्म। तो चाहे मजदूर हो, चाहे एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे एक सैनिक हो जो बॉर्डर पर लड़ रहा है, चाहे जो भी आदमी है, व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है, अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहा है, उन कर्तव्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि वह किसी न किसी तरह से स्पिरिचुअलिज्म के मार्ग से जुड़ा रहे। और जब वो स्पिरिचुअलिज्म के मार्ग से जुड़ा रहेगा तो अपने आप वह दिशा ज्यादा सुदृढ़ और ज्यादा मजबूत होती जाएगी। क्योंकि हम आज बात जस्टिस डिस्पेंसेशन की बात कर रहे हैं, उसमें स्पिरिचुअलिज्म के रोल की बात कर रहे हैं, तो यह तो ऐसा मार्ग है कि जिसमें पूर्णतः हर व्यक्ति को जो इससे जुड़ा हुआ है उसको सत्य के मार्ग, उसको हमेशा को ये सिखाया जाता है, एक अधिवक्ता को ये सिखाया जाता है कि आप उनके एथिक्स बने हैं, उनके एथिक्स के अंदर जो है वो उनको ये कहा गया है कि सत्य के मार्ग पे चले, उनके एथिक्स में एक आ गया है कि अपने क्लाइंट के बारे में सोचें, अपने कर्तव्य के बारे में सोचें, कानून के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें। इसी तरह जब जज बनता है व्यक्ति, तो उसको कहा जाता है कि आप न्यायाधीश बनते हैं, आपका डिवाइन पावर है, इस डिवाइन पावर को ध्यान से यूज करें। उसको ये एक न्यायाधीश को यह समझाया जाता है कि किस प्रकार से समाज के लिए आपको एक संत के रूप में कार्य करना आवश्यक है और किस प्रकार से आपको जो है वो एक निश्चल एक अलग भाव से आपको चलना आवश्यक है। तो इसी ये सब सोच, ये सारा सोच जो इस पूरी व्यवस्था को कायम करती है, न्याय की इस पूरी व्यवस्था को कायम करती है, इस सारी सोच के अंदर मेरी समझ में जो स्पिरिचुअलिज्म का अध्यात्म का जो मार्ग है वो इसको सबसे अलग शक्ति प्रदान करता है, इसको लाइट प्रदान करता है। और इसी लाइट पे यदि अगर हम सब आगे बढ़े तो हम इसी मार्ग पे चलते हुए कानून के द्वारा, विधि के द्वारा, न्याय के द्वारा एक बेहतर विश्व, एक बेहतर देश, एक बेहतर समाज कायम कर सकते हैं।
हार्दिक धन्यवाद आज के इस सत्र के चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी का, आपके अनुभव और प्रज्ञा को हमसे बांटने के लिए। अब एक बहुत ही सुंदर गीत लेकर हमारे बीच आ रहे हैं बीके युगरतन भाई।
न्याय के रखवाले तशरीफ लाए, है स्वागत आपका हम दिल से ये गाएं, 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 हम दिल से ये गाएं। इंसाफ के देवता आज है आए, इंसाफ के देवता आज है आए, इंसाफ के मंदिर में है मूरत सजाए। न्याय विदों का दिल से अभिनंदन है, न्याय विदों का दिल से अभिनंदन है, दशो दिशाएं करते वंदन है। विधि वेत्ता विधाता प्रभु भी आए, विधि वेत्ता विधाता प्रभु भी आए, है स्वागत आपका हम दिल से ये गाएं, हम दिल से ये गाएं, हम दिल से ये गाएं। अपने है अनेकों का जीवन सवारा, आपने है अनेकों का जीवन सवारा, न्याय हेतु सभी ने आपको है निहारा। न्याय व्यवस्था में आध्यात्मिकता आए, हो न्याय व्यवस्था में आध्यात्मिकता आए, सुख शांति समाज में समा जाए। प्रभु की है यही तो शुभकामनाएं, हम सब की यही है शुभ भावनाएं, है स्वागत आपका हम दिल से ये गाएं, हम दिल से ये गाएं, हम दिल से ये गाएं। न्याय का है दरबार, सर्वोच्च न्याय का है दरबार, विश्व मुख्य न्यायाधीश का ये घर बार, आप और हम उनकी ही संतान है, हो आप और हम उनकी ही संतान है, आपसे बढ़कर क्या कोई महान है। सभी देते हैं आपको लाखों दुआएं, सभी देते हैं आपको लाखों दुआएं, है स्वागत आपका हम दिल से ये गाएं, हम दिल से ये गाएं, हम दिल से ये गाएं। न्याय के रखवाले तशरीफ लाए, है स्वागत आपका हम दिल से ये गाएं, 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 हम दिल से ये गाएं।
We thank brother for developing the spirit of global cooperation through your inspiring song. अब हम लाभान्वित होंगे उनसे जो कि ब्रह्मा कुमारी ज्यूरिस्ट विंग के चेयरपर्सन हैं। आदरणीय बीएल महेश्वरी जी। आप अनुभवी वकील और गहरे वक्ता हैं। जुरिस्ट विंग के चेयरपर्सन के रूप में नीति निर्माताओं में आध्यात्मिकता को पहुंचाने के कार्य में आप सदा अग्रणीय रहे हैं। आग्रहपूर्वक आमंत्रित करते हैं बीएल महेश्वरी जी को कि आज के विषय पर ईश्वरीय प्रज्ञा दे।
ओम शांति। राज्य शिक्षा शोध प्रतिष्ठान इंडियन सोसाइटी लैब के तहत एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, इसके 22 प्रभाग है, दूरी प्रभाग उसके अंदर एक है। आज के इस कार्यक्रम के लिए हमने मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण करने के लिए शांताकाराम प्रसन्नचित आचार विचार के धनी मान्य न्यायाधिपति कुशल सिंह जी पाठी न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को निवेदन किया और हमारे निवेदन को उन्होंने सर स्वीकार किया। हम उनके बहुत आभारी हैं। आदरणीय पाठी साहब कई गुणों के धनी हैं, उनमें एक गुण वो भी है चिकित्सक का न्यायिक क्षेत्र में। जैसे लोग होम्योपैथी से इलाज करते हैं, एलोपैथी से इलाज करते हैं, और पाठी साहब सिंपैथी से न्याय देते हैं, ये उनमें एक बहुत बड़ा गुण है। आज का जो विषय है स्पेशलिटी इंडिस्पेंसिबल फॉर जस्टिस, जस्टिस के लिए स्पेशलिटी आध्यात्मिकता बहुत आवश्यक है। अगर न्याय में आध्यात्मिकता नहीं हो तो न्याय अपूर्ण है, और इसके कई उदाहरण हैं जो हम दे सकते हैं और दिए जा सकते हैं। जस्टिस इज बेस्ड ऑन लॉ, लॉ इज ए रूल ऑफ एक्शन, लॉ डिनोट्स द ह्यूमन एक्शंस और कंडक्ट्स। जैसे हम भी कहते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, और लॉ इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। जैसे जैसे सोसाइटी को जरूरत होती है वैसे वैसे सोसाइटी में एक वातावरण बनता है और उसके अनुसार ही कानून बनते जाते हैं और लोगों को उन कानून से मदद मिलती जाती है। परंतु अक्सर देखा यह गया है कि जब हम उस स्टेज पर पहुंचते हैं तब तक वो कानून पिछड़ जाता है और हमारी सोसाइटी की मांग और आगे चली जाती है, बढ़ती जाती है। मैन मेड लॉ कभी कंप्लीट नहीं होता, क्यों? कि मनुष्य कभी कंप्लीट नहीं है। मनुष्य कर्म करता है, सुकर्म भी होता है, विकर्म भी होता है, सचिव में जाके अकर्म होता है, पर जब इस दुनिया में कर्म करता है तो वह विकर्म या सुकर्म होता है, और उसके दोनों पहलू होता है। ऐसी सूरत में मनुष्य द्वारा बनाया कर कोई भी कानून कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता, परंतु वर्च्यूज और वैल्यूज के आधार पर जो गुण नियम बनाए जाते हैं जिनको कि हम गॉड मेड लॉज कहते हैं वो एब्सोल्यूट होता है, और जब वो एब्सोल्यूट होता है वो कभी भी चेंजेबल नहीं होते। मैन मेड लॉ चेंजेबल होता है। कहने को तो हम कहते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य सबसे शक्तिमान व्यक्ति है, और तो उस मनुष्य को नियंत्रित में रखने के लिए हमें दिन ब दिन बहुत कानून बनाने पड़ते हैं। आज तक हम हर देश की पार्लियामेंट ने, उसकी राज्यों की असेंबलीज ने या लोकल बॉडीज ने ढेर सारे कानून बनाए हैं, और नित्य दिन प्रतिदिन नए नए कानून बनते जा रहे हैं, परंतु आज तक हमें कभी ये स्थिति नहीं देखी कि इन कानून के होते हुए मनुष्य कभी भी कंट्रोल्ड सिचुएशन में रहा। हमेशा मनुष्य ने ऐसे ऐसे कर्म किए जो उसके लिए उसको कंट्रोल में रखने के लिए जो भी नियम बनाए गए वो नियम सारे अधूरे पड़े रह गए। हमने देखा है कि सोसाइटी में लगातार जो लड़े झगड़े होते हैं वो प्रॉपर्टी पावर और पोस्ट के लिए होते हैं, और सारे जो नियम बनाए होते हैं वो इन्हीं के संबंधित बनाए जाते हैं। मगर सिविलाइज कल्चरल सोसाइटी में जब तक धर्म नहीं हो तब तक ये जो प्रॉपर्टी के लिए पावर के लिए जो झगड़े होते हैं वो कभी शांत नहीं हो सकते। देयर इज ए कॉन्स्टेंट फाइट फॉर गेटिंग प्रॉपर्टी पावर और पोस्ट एंड फॉर कंट्रोलिंग वाइल्ड एनिमल्स इंस्टिंक्ट इन ह्यूमन बींग्स एंड फॉर हैविंग सिविलाइज कल्चरल सोसाइटी। रिलीजन हैव कम इन टू एग्जिस्टेंस। रिलीजन इज द फाउंडेशन फॉर वैल्यू बेस्ड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए सोसाइटी। The force and sanction behind civilized society depends upon moral values. 28 नवंबर 1949 को हम भारतवासियों ने अपने आप को एक संविधान दिया, और संविधान देकर हमने अपने आप को उसको अडॉप्ट किया और ये प्रतिज्ञा की कि हम इसके अनुसार चलेंगे। हमारे संविधान में हमने बहुत से प्रावधान किए और उन प्रावधान में ये करते हुए तय किया कि संविधान से हमारे देश को प्रगति मिलेगी और हमारा देश प्रगति करता रहेगा। परंतु देखा गया है कि ये संविधान भी अपने आप में संपूर्ण नहीं है। हमारे संविधान के पार्ट थ्री में हमने फंडामेंटल राइट्स का विवरण किया है कि हर प्रत्येक नागरिक जो भारत का है उसको यही मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। आर्टिकल 191G में उनका वर्णन किया गया है। परंतु उसके साथ ही उसी पार्ट में ये कहा गया है कि ये मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, यह निर्विवाद सत्य है कि मनुष्य द्वारा बनाई गई कोई कृति कभी भी संपूर्ण हो ही नहीं सकती, चाहे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हो या कोई और चीज बनाई हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से हमारा आदर्श है। आज कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही सारा देश कार्यरत है, सारे देश का कंट्रोल कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही होता है, मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन भी परिपूर्ण नहीं है। आर्टिकल 368 में यह स्पष्ट बताया गया है कि पार्लियामेंट जब चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में वेरिएशन कर सकती है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिपील कर सकती है। इसका मतलब यह क्लियर हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने लिए, अपने पीपल के लिए, अपने वायदे के लिए, अपने भविष्य के लिए अडॉप्ट किया, वो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट जब चाहे जब उसको हटा सकती है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी लगातार कितने संशोधन हो गए हैं, इससे स्पष्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन परिपूर्ण नहीं है। और जब जब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन जैसे जैसे समस्या उत्पन्न होती है, तब न्यायालयों को उससे आगे आके समाधान करना पड़ता है। ऐसे में एक दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अहमदाबाद के समक्ष जैन समाज ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और इसमें निवेदन किया कि पॉल्यूशन के 9 दिन में हम बड़े अहिंसक रहते हैं और उस समय हम न तो बाजार में खुला मांस दे सकते हैं, न किसी जानवर का कटिंग देख सकते हैं। इसलिए 9 दिन के लिए गुजरात में एनिमल कटिंग और सेल ऑफ मीट को बंद किया जाए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अहमदाबाद ने ऐसा सर्कुलर पास कर दिया जिसको गुजरात हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने उस सर्कुलर को क्वेश्चन करते हुए कहा कि आर्टिकल 191G में हरेक व्यक्ति को मांस बेचने का भी मौलिक अधिकार है और दूसरा टू बी नॉन वेजिटेरियन ये भी एक मौलिक अधिकार है। इसलिए इन दो के आधार पर वो सर्कुलर क्वेश्चन कर दिया गया जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा विरोधक संघ वर्सेज मिर्जापुर मोती कुरेश जमाल एक्सेट्रा रिपोर्टेड इन AER 2008 सुप्रीम कोर्ट 1892 इस मामले का फंडामेंटल राइट्स का अनुवाद करते हुए, इंटरप्रिटेशन करते हुए एक बहुत अच्छा निर्णय दिया। सुमान्य सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि माना कि प्रत्येक व्यक्ति का आर्टिकल 191G के नीचे मौलिक अधिकार है कोई भी व्यवसाय करने का और सेल ऑफ मीट भी एक मौलिक अधिकार है, लेकिन ये परमानेंटली मौलिक अधिकार से उसको वंचित नहीं कर रहे हैं, उनको थोड़े समय के लिए वंचित कर रहे हैं। साल में 9 दिन के लिए वंचित होना कोई मौलिक अधिकार से वंचित होना नहीं कहा जा सकता। और उन्होंने इसके लिए एक उदाहरण दिया मुगल एम्परर अकबर का कि जो 7 दिन नॉन वेजिटेरियन रहता था और शिकार का बड़ा शौकीन था, धर्म की शिक्षा ली, उसके पश्चात उसने ये घोषणा की कि एक सप्ताह में मैं शुक्रवार और रविवार को मांसाहारी नहीं रहूंगा। तो जब एक भारत का बादशाह अगर सप्ताह में 2 दिन नॉन वेजिटेरियन रह सकता है, शाकाहारी नहीं रह सकता है, तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या अहमदाबाद के मुसलमान साल में 9 दिन के लिए या जो मांसाहारी है वो साल में 9 दिन के लिए शाकाहारी नहीं रह सकते। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया नवाब वाजिद अली शाह का कि एक दिन मुहर्रम और होली दोनों एक ही दिन आ गए थे, तो हिंदुओं ने यह तय किया कि मुहर्रम जो मातम का दिन होता है और होली जो खुशी का दिन होता है हम होली नहीं मनाएंगे। सवेरे ताजिए निकले, वाजिद अली शाह भी एक ताजिए के साथ थे। दोपहर तक मुहर्रम खत्म हो गया, उसके पश्चात उन्होंने पूछा कि आज हिंदू होली क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो उनको बताया गया कि हिंदुओं ने आउट ऑफ रेस्पेक्ट मुसलमानों के साथ में, क्योंकि उनका दिन जो है वो मातम का दिन है, होली खेलने का अपने आप को मना किया है और नहीं होली खेलेंगे ये तय किया है। तो वाजिद अली शाह ने कहा अगर हिंदुओं ने मुसलमानों के लिए इतना सम्मान दिखाया है तो अब हमारे मुहर्रम खत्म हो गया है, हम मुसलमानों को भी हिंदुओं के लिए ऐसा सम्मान दिखाना चाहिए। और उन्होंने कहा चलो हिंदुओं के मोहल्ले में, और जाके उन्होंने पहला रंग डाला और मुसलमानों के साथ होली खेली। अगर 91G का इंटरप्रिटेशन करें तो उसके सामने ये सर्कुलर एक मिनट भी नहीं ठहर सकता। जब तक कि जस्टिस के अंदर स्पेशलिटी नहीं डाल के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया तब तक वो जस्टिस जस्टिस नहीं हो सकता था। और जैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पेशलिटी डाली तो जस्टिस हुआ, और जस्टिस हुआ तो ये हुआ कि हिंदू भी अपना कार्य अच्छी तरह कर सके सम्मान से, मुसलमान भी अपना कार्य कर सके अच्छी तरह सम्मान से। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मल्टीकल्चरल सोसाइटी जैसे देश में अगर एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट नहीं होगा तो ये डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती। दूसरा उदाहरण मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का देना चाहूंगा। जब नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ स्कूल एजुकेशन भारत सरकार द्वारा लागू किया गया तो उसको सर्वोच्च न्यायालय में पीआईएल के द्वारा चैलेंज किया गया। उसमें ये बताया गया कि ये कुरिकुलम आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के विरुद्ध है। आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यह बताया गया है कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो भारत सरकार से या किसी भी सरकार से मदद लेता है वो अपने संस्था में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। वाइल होल्डिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देयर लॉर्डशिप ले ग्रेट एम्फेसिस ऑन एसेंशियल सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज एज अंडर नन कैन ऑल्सो डिस्प्यूट दैट पास्ट 5 decades हैव विटनेस कॉन्स्टेंट इरोजन ऑफ द एसेंशियल सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड इंक्रीज इन साइनसिज्म एट ऑल लेवल्स। वी आर हेडिंग फॉर ए मटेरियलिस्टिक सोसाइटी डिसरिगार्डिंग द एंटायर वैल्यू बेस्ड सोशल सिस्टम। मॉरल वैल्यूज आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। सोसाइटी वेयर देर आर नो मॉरल वैल्यूज देर वुड नाइदर बी सोशल ऑर्डर और सेक्युलरिज्म। बिरेप्ट ऑफ मॉरल वैल्यूज सेक्युलर सोसाइटी और डेमोक्रेसी विल नॉट सर्वाइव। वाइल डिस्कसिंग द यूनिवर्सल कोड वैल्यूज देर लॉर्डशिप फर्दर ऑब्जर्व ट्रथ विथिन ब्रैकेट सत्य, राइटियस कंडक्ट विथिन ब्रैकेट धर्म, पीस विथिन ब्रैकेट शांति, लव विथिन ब्रैकेट प्रेम एंड नॉन वायलेंस विथिन ब्रैकेट अहिंसा आर द कोर यूनिवर्सल वैल्यूज विच कैन बी आइडेंटिफाइड एज द फंडामेंटल स्टोन ऑन विच द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम कैन बी बिल्ट अप। दीज 5 आर इंडेड यूनिवर्सल वैल्यूज एंड रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट the 5 domains of human personality: intellectual, physical, emotional, psychological and spiritual. They also are corresponding to correlated will of the 5 major objectives of education, namely knowledge, skill, balance, vision and identity. The highest court of the nation has as far back in the year 2002, which is the case reported at AIR 2002 Supreme Court at page 3178, has held as above. But the undersigned fails to understand why no direct or indirect attention has been given to these valuable observations made by Honorable Supreme Court in the above case. यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि बहुत से जैसे में बहुत से कानून बनते हैं, अलग अलग कानून बनते हैं, पर कई दफे वो बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग भी होते हैं। कई दफे वही कानून हमारे सिर पे चढ़कर बोलते हैं, हम उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं पर पा नहीं सकते। हमारे यहाँ भी एक ऐसी विधि शंकर जी से कहना चाहिए उत्पन्न हुआ आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोवाइड किया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी मामले में डेथ सेंटेंस भी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट से दिया हुआ है, तो भी उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो माफ कर सकते हैं या उसमें कोई संशोधन कर सकते हैं। परंतु अब स्थिति यह हो गई है कि हर एक रेपिस्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट से डेथ सेंटेंस दिया गया है वो आर्टिकल 72 में मान्य एक्सीलेंसी महामहिम के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माफी मांगता है और पार्डन मांगते हुए कहता है कि मुझे इस मामले में जो फांसी की सजा दी गई उसको माफ कर दो। एक अच्छी बहुत बड़ी विडंबना है ये, एक तरफ तो रेपिस्ट रेप करता है उसको फांसी की सजा होती है, सुप्रीम कोर्ट तक उसको फांसी की सजा रखी जाती है और तत्पश्चात वो आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट महोदय के सामने जाके कहता है कि मुझे माफ कर दो। और उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता वर्षों तक। अभी फिलहाल 6 दिसंबर 2019 को महामहिम ब्रह्मा कुमारी आबू रोड के शांतिवन प्रांगण में पधारे थे एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए, नारी सशक्तिकरण विषय था। महामहिम ने अपने प्रवचन में एक चिंता जाहिर की कि वो आर्टिकल 72 में एक बड़ी विद्यम समस्या के सम्मुख है जिसमें रेपिस्ट दया की भीख मांगता है और कहता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई डेथ सेंटेंस को माफ कर दिया जाए और उस प्रक्रिया में कई वर्षों लग जाते हैं और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट से मांग करूंगा कि वो आर्टिकल 72 को इस संबंध में इस पर विचार करके और इसमें माकूल संशोधन क्या किया जाए इस पर अपना निर्णय दें और कानून बनाए। ऐसी विषम परिस्थिति आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड है और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सर्वोपरि है, तो ये सब ये इंगित करता है कि जस्टिस विच इज बेस्ड ऑन लॉ इज नेवर कंप्लीट विच इज बेस्ड ऑन लॉ अनलेस इट इज बेस्ड ऑन गॉड मेड लॉज, एंड जब तक गॉड मेड लॉज के ऊपर ये जस्टिस बेस्ड नहीं होगा तब तक किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए स्पिरिचुअलिटी इज इंडिस्पेंसिबल फॉर जस्टिस। ओम शांति, जय हिंद।
एक अंतर्दृष्टि देते आपके संबोधन के लिए महेश्वरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन स्पिरिचुअल पैरलेंस ब्लेसिंग्स प्ले ए पाइवोटल रोल। When our program is blessed by a living saint, it becomes blissful. Living saint? I'm talking about Rajyogi Nirvairji. Brother Nirvair is one of the founding pillars of this institution. He, as the Secretary General of Brahma Kumaris, has been instrumental for establishing hospitals, charitable missions, retreat centers, and so on. Chief Editor of World Renewal Magazine of Brahma Kumaris. Likewise, he holds several responsibilities in his life, but yet he remains always light and powerful. Your nectar of wisdom always transforms humanity. Let us hear from him his good wishes and inspiring address.
Om Shanti. परमपिता परमात्मा की प्रिय संतानों, विशेष रूप से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ज्यूरिस्ट सर्विस विंग के चेयरपर्सन आदरणीय भ्राता बीएल महेश्वरी जी, वाइस चेयरपर्सन आदरणीय बहन पुष्पा जी और नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय बहन लता अग्रवाल जी और ज्यूरिस्ट विंग के ऑनरेबल पेट्रंस ऑनरेबल जस्टिस वी ईश्वरैया जी और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस बी डी राठी जी फॉर्मर जज इंदौर हाई कोर्ट पेट्रन ज्यूरिस्ट विंग राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन और आदरणीय बहन ब्रह्मा कुमारी रश्मि ओझा नेशनल कोऑर्डिनेटर ज्यूरिस्ट विंग विशेष रूप से जो हमारे परमादरणीय चीफ गेस्ट हैं ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस पुष्पिंदर सिंह भाटी जज राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर और ऑनरेबल जस्टिस एएस पचपुरे फॉर्मर जज कर्नाटका हाई कोर्ट पेट्रन ज्यूरिस्ट विंग सतीश तन्नु जी नेशनल कोऑर्डिनेटर ज्यूरिस्ट विंग ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपक मिश्रा जी फॉर्मर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आप सभी को नेशनल ज्यूरिस्ट ई कॉन्फ्रेंस ऑन स्पिरिचुअलिटी इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो 11 और 12 जुलाई शाम को 6 से 7:30 बजे हो रही है इसके लिए खास प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से खासकर दादी हृदय मोहिनी जी दादी रतन मोहिनी जी तथा सब भाई बहनों की ओर से इस ई कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले सभी आमंत्रित आदरणीय मेहमानों और लाभ लेने वाले सभी श्रोताओं को परमपिता परमात्मा शिव की तरफ से जो आध्यात्मिकता के सोर्स हैं और हम सबको आध्यात्मिकता क्या है आध्यात्मिकता का जीवन क्या होना चाहिए आध्यात्मिक मूल्य क्या होने चाहिए आध्यात्मिक मूल्यों को धारण करने का सहज तरीका क्या है इसके बारे में जो स्वयं पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा पिता के द्वारा हमें ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दी है। उस शिक्षा के साथ जोड़ करके खास ये डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस और उसमें आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। यूं तो माना जाता है कि जजिस जो जस्टिस बनते हैं या वकील जो वकालत करते हैं वो सत्यता को सिद्ध करने के लिए ही वकालत करते हैं, और जजिस जो जजमेंट देते हैं उसमें बिना पक्षपात के उनका निर्णय होता है। और इसलिए सारे विश्व में आज भी सबका विश्वास बना हुआ है। हाँ, ये जरूर है लोअर कोर्ट्स होती हैं, उसमें अगर कोई खुश नहीं होता उनकी जजमेंट से तो उससे हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और आखिर में जाकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी पहुंच जाते हैं। इसमें देखा गया है कि अगर आध्यात्मिकता को हमारे आदरणीय वकील और जज वो भी परिचित हों और उनकी कुछ अपनी रुचि हो, कुछ उनका अपना अभ्यास भी हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भी अच्छे अच्छे अनुभवी वकील हैं और जो अच्छे अच्छे अनुभवी वकीलों में से ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, बड़ी नोबल आत्माएं हैं, बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं, और उनके दिल में मैं समझता हूं यही रहता है कि हम किसी के साथ इनजस्टिस ना हो उसका ध्यान रखें। अर्थात जो राइटियस जस्टिस है वो सबको मिलनी चाहिए। और इसमें देखा गया है कि आध्यात्मिक वैल्यूज जो हैं, जो मूल्य हैं, इनको भी अगर थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं, साथ जोड़ते हैं, तो इससे भी अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करना सहज लगता है। तो मेरी इस कॉन्फ्रेंस में, ई कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले सभी आदरणीय जजेस और ज्यूरिस्ट्स जो भी हैं, सभी को एक नम्र निवेदन यही है कि समय के अनुसार और अपने वायदे के अनुसार परमपिता परमात्मा फिर से हमें वो सत्य ज्ञान स्वयं के बारे, आत्मा के बारे में, कर्म के बारे में, कर्म अकर्म विकर्म श्रेष्ठ कर्म उसके बारे में, और इसके साथ साथ मनुष्य को एक इतनी ऊंचाई में ले जाने की शिक्षा, क्योंकि ईश्वरी शिक्षा जो है वो ईश्वर जब स्वयं देते हैं तो वो मनुष्य में एनलाइटनमेंट भी लाती है, तीसरा दिव्य नेत्र खुल जाता है, उसके साथ में मूल्यों की पूरी पहचान ठीक से हो जाती है, और उनको धारण करने से लाभ क्या होता है वो उसका जब अभ्यास करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ अनुभव प्राप्त करते हैं। और उस अनुभव के आधार से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे सभी ज्यूरिस, चाहे वकील हैं चाहे जजिस हैं, अगर सब थोड़ा सा जो मनुष्य जीवन का आदि काल से हिस्सा रहा है आध्यात्मिकता, उसको भी अपने जीवन का अंग बना के चल रहे होंगे, तो मैं समझता हूं आप अपने कार्य में सकुशल श्रेष्ठ जजमेंट्स पास करवाने में या जजमेंट्स देने में आप सफल होंगे। जिनके प्रति वो जजमेंट्स होंगी उनको भी आत्म शांति मिलेगी और आपको भी सबकी दुआएं मिलेगी। तो सबकी दुआएं भी लें, और जो सत्यता है, इंसानियत है और दैवी संस्कार की आत्माओं के दिव्यता है, इन सब के आधार से अगर ज्यूरिस अपना कार्य करेंगे तो सभी को बहुत बहुत मैं समझता हूं संतोष प्राप्त होगा। आज मनुष्य के जीवन में कमी है अगर तो संतुष्टता की कमी, संतोष की कमी है, शांति की कमी है, और वो अगर थोड़ा समय स्वयं को आत्मा समझ, अपने स्वधर्म शांत स्वधर्म में मन को टिकाएं और शांति के सागर पिता परमात्मा के साथ मन लगाएं, तो मैं समझता हूं हम अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी सदा सुखी रहेंगे, और जो हमारा कार्य है डिस्पेंसिंग जस्ट ऑफ जस्टिस, उसमें भी हम सफल होंगे और सबकी दुआएं लेने के हम क्या कहें काबिल हो जाएंगे। आप सबको, आपकी इस ई कॉन्फ्रेंस के लिए कोटि कोटि मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।
हार्टी थैंक्स भाई साहब फॉर योर डिवाइन ब्लेसिंग्स। योर इंस्पायरिंग वर्ड्स आर ऑलवेज एम्पावरिंग। आज के इनॉग्रल सेशन के डिग्निटरीज का दिल से शुक्रिया करने के लिए हमको ज्वाइन कर रही हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी लता दीदी। आप नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ ज्यूरिस्ट विंग हैं, आप ब्रह्मा कुमारीज की लीगल एडवाइजर हैं, आपसे अनुरोध है आभार प्रकट करें।
ओम शांति। दी सुप्रीम गॉड फादर शिव, दी सुप्रीम जस्टिस, वी ऑल डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दी लर्नर्ड स्पीकर्स and the viewers and the listeners from all over India. As per the topic, spirituality in dispensation of justice. In judiciary, there are three terms: order, passed, judgment, delivered, and justice, done. Orders are always passed, judgment is always delivered, but justice has to be done. It is also said that justice should not only be done, but it should also be seen to be done. So my divine brothers and sisters, for doing justice, we require spirituality. That is, we must become embodiment of the values. Values are knowledge. That is spiritual knowledge and knowledge of law. Second comes peace. We must be in a peaceful stage of mind. Then only we can do justice. Third is purity. Purity is man vachan karma se kisi ko dukh na dena. Then comes happiness. If we are happy while delivering the justice, then the justice will be done. As both the parties will be happy in receiving the justice, now even the loser party will be happy. There must be love. That is Vasudeva Kutumbakam. If we are having love, that is we are not biased with any of the party, we can really do justice. Then comes bliss, anand. While delivering justice, if it is really done justice, then we will always be in a blissful stage. That is, we will have the feeling of anand. And these six powers, values are there, then it leads to the power. Real justice done gives us power within ourselves, because we are happy and we are in a blissful stage, and hence we experience a powerful stage. So now, this knowledge of spirituality and having values in ourself is given to us by the Supreme Godfather. Such a beautiful knowledge, such a wonderful knowledge. And he has taught us that how we must become an embodiment of this knowledge by meditation in our life. So my first and the foremost thank with my full of the hearts goes to my Supreme Godfather, Shiv. Now among us, we have heard the blessings from our respected, honorable Rajyogi, Brahma Kumar Nirvair Bhaiji. From his very childhood, at the age of about 20, he came in the contact of this institution, and since then he has been practicing Raj Yoga, and hence his blessings has made us so powerful and so enlightened. So my thanks goes to him. Now I thank our chief guest, Honorable Mr. Justice Pushpender Singh Bhati, Judge Rajasthan High Court, Jodhpur. He has also shared his words of wisdom with us, enlightening us with the topic. Justice V. Ishwarya, who is a regular student of this institution since last more than 20 years. I remember for the first time when he had come to our Gansovar complex. He had just become the High Court judge, and he came in contact with this institution, and he became an embodiment of the knowledge given by the Godfather, through which he could follow while giving justice in his field. And he is a practical example of how this spirituality can be parted with in giving judgments. So thanks, Brother Justice Ishwarya. I also thank our chairperson of the jurist wing, Advocate Brother B.L. Maheshwari ji. He is also the follower of this institution since last about more than 25 years. He has been practicing in Jodhpur and practically implying all the values taught by this institution in his life, and for many, many thanks for giving his keynote speech on the topic. My thank also goes to our respected Raj Yogini Brahma Kumari Pushpa Didi ji, who is the vice chairperson of this jurist wing. She has enlightened us about our institution, what is Brahma Kumaris, and has also taken us for a spiritual journey to encourage us and to give us power, the very sweet and a very meaningful journey. So many, many thanks to Pushpa Didi. I also thank the master of the ceremony of today's program for conducting the program very nicely. I also thank our behind the curtain brothers and sisters for making this conference a very successful conference. We have one national coordinator of the jurist wing, Sister Vidya from Belgaum, and Brahma Kumari Shraddha Ben from the headquarter, who is an headquarter coordinator of the jurist wing. They have played a vital role in making this conference successful. I also thank you all, because without you all, this conference cannot be a successful conference. Hence, my heartfelt thanks to you all. And lastly, my heartfelt thanks to the Awakening Channel team for cooperating and bringing this program up to you for your views in this lockup time and making it a successful event. Om Shanti.
Sabka dhanyavad karne wali Lata Didi ka bhi tehe dil se dhanyavad. Let's thank the Almighty for such a fruitful and inspiring evening. Let's conclude the inaugural session with sincere thanks to all the divine dignitaries and you all dear participants. We shall be meeting again tomorrow at 6 p.m. for our next session of this Jurist Wing e-conference on theme Interface Between Ethics and Law. Om Shanti.
Awakening to a new way of living.
Brahma Kumari's Jurist Wing ki taraf se 2 days online conference Mount Abu headquarters se 11 aur 12 July Spirituality in Dispensation of Justice Desh ke prakhyat nyayvid apne anubhav se hame avgat karayenge ki nyayapalika mein कैसे आध्यात्मिकता सहायक होती है देखिए अवेकनिंग चैनल पर टाटा स्काई 1084 जियो टीवी 1060 आप इस कॉन्फ्रेंस को यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं अवेकनिंग टीवी /लाइव पर
ग्यारह जुलाई 2020 की सकार मुरली ओम शांति मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है पढ़ाई से ही राजाई मिलती है धारणा के लिए मुख्य